दोपहर का वक्त था। शादी के बाद राधिका आज पहली बार स्कूल गई थी। स्टाफ से खूब मुबारकबाद और गिफ्ट मिले। राधिका स्कूल के बाद सबको पार्टी देने गई थी और अब माधव के रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। कहिए जनाब, क्यों बुलाया आपने हमें यहाँ? राधिका माधव के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और लबों पर चंचल मुस्कान बिखेरे प्यार से उसे देखने लगी। बस यूं ही, सोचा आज शादी के बाद आप पहली बार स्कूल गई थी तो इसी खुशी में आज लंच साथ किया जाए। माधव ने सौम्यता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर उसकी कलाई थामते हुए उसे अपने टेबल के पास ले आया। वहां रखा खूबसूरत सा बुके उठाया और मुस्कुराकर राधिका की ओर बढ़ा दिया। मेरी इस खुशियों की महकती फुलवारी के लिए एक छोटा सा बुके। अपने लिए ये अनोखा संबोधन सुनकर राधिका खिलखिला उठी और बुके अपनी हथेलियों में थामते हुए उस फूलों की खुशबू अपनी सांसों में भरने लगी। पसंद आया गिफ्ट? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपके प्यार की तरह। पर इतना बड़ा बुके मेरे किस काम का? एक काम करते हैं, मैं इसे रख लेती हूँ और बाकी यहाँ सजा देती हूँ। राधिका ने मुस्कुराकर उसके गिफ्ट की तारीफ की, फिर उस बुके में से एक खूबसूरत सा गुलाब का फूल निकाल लिया और बाकी फूलों को टेबल पर रखे वास में नकली फूलों की जगह सजा दिया। राधिका के हाथ में मौजूद गुलाब को देखते हुए कुछ पुरानी यादें माधव के जहन में उभरी और कुछ तीखे शब्द कानों में गूंजते हुए दिल को चीर गए। तुम्हारा गिफ्ट भी तुम्हारे ही तरह सस्ता और चीप है, ये सुमन के शब्द थे। उसे खुश करने की कोशिशों में एक कोशिश उसे गुलाल देना भी था, जिसे सुमन ने उसी पल मसलकर फेंक दिया था और फिर खुद अलग अलग बुके की फरमाइश करने लगी थी, जिसे माधव बिना शिकायत के पूरा कर देता। कितने खूबसूरत लग रहे ना? राधिका के शब्द कानों से टकराए तो माधव अपने ख्यालों से बाहर आया। राधिका वास में लगे फूलों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी खिलती मुस्कान देखकर माधव भी सब भूलकर मुस्कुरा उठा। बहुत खूबसूरत है, पर आपसे कम। राधिका ने कनखियों से माधव को देखा और गालों को फुलाए भौं उचकाते हुए सवाल किया, मैं फुलवारी लगती हूं आपको? माधव ये सवाल सुनकर राधिका के जरा करीब चला आया और उसके उन बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से जवाब दिया, लगती नहीं है, बल्कि आप मेरी जिंदगी की वो फुलवारी हैं जिसमें रोज खुशियों के अलग अलग फूल खिलते हैं, जिससे मेरी जिंदगी महकती है। राधिका टकटकी लगाए माधव को देखती रही, उसकी उन गहरी आंखों की गहराइयों तक समाये जज्बातों में खोती चली गई। अगर मैं फुलवारी हूं तो आप क्या हैं? मैं वो भंवरा हूं जो इस फुलवारी की रक्षा करता है, ताकि इसके रंगों और खुशबू को कोई और न चुरा ले। राधिका माधव का जवाब सुनकर उसके जरा करीब आई और उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए खोए स्वर में कहने लगी, ओहो, आप वो माली हैं जिसने उस बंजर जमीन पर अपने प्यार से बीजों को अंकुरित करके उस फुलवारी को बनाया है। अपने मोहब्बत भरे कोमल स्पर्श से उसके मुरझाए फूलों में रंग भरकर उन्हें नई जिंदगी दी है और अपने एहसासों की खुशबू से इस फुलवारी को महकाया है। अब दोनों के लब खामोश थे, जज्बात आंखों से झलक रहे थे, धड़कनें प्रेम धुन छेड़ रही थीं और इस लम्हे में दोनों प्यार भरे एहसासों की गर्माहट महसूस करते हुए एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। माधव के लब राधिका के लबों से टकराने ही वाले थे कि अचानक ही उस सन्नाटे में फोन की रिंग की आवाज गूंज उठी। दोनों चौंकते हुए मोहब्बत के महोजाल से बाहर आए। राधिका हड़बड़ाते हुए पीछे हट गई, फोन निकालकर देखा तो कंपनी से फोन था। फोन काटने के बाद उसने कातर निगाहों से माधव को देखा जो हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। राधिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कंधे हिलाए, जैसे कह रही हो कि उसकी क्या गलती है। माधव ने अफसोस से सर हिला दिया। राधिका ने इशारे से कान पकड़कर माफी मांगी और अब की बात उसकी क्यूट सी हरकतें देखकर माधव हंस पड़ा। उसके साथ राधिका भी हंस पड़ी। बताइए हुजूर, क्या खाना पसंद करेंगी आज आप लंच में? कुछ भी जो आप बनाकर खिला दें। राधिका ने मुस्कुराते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर माधव भी मुस्कुरा दिया। चलिए तो आप कुछ देर यहीं रुकिए, हम आपके लंच का इंतजाम करके आते हैं। माधव जैसे ही ये कहकर जाने के लिए उठा, राधिका भी उठकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं भी चलूंगी आपके साथ, आप बनाइएगा और मैं देखूंगी कि कुकिंग करते हुए कैसे लगते हैं आप। राधिका की ये इच्छा सुनकर माधव के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। राधिका, आप वहां जाकर क्या करेंगी? गर्मी होगी वहां, बेवजह परेशान हो जाएंगी। आप यहीं बैठकर इंतजार कीजिए, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। नहीं, मैं साथ चलूंगी आपके, आप भी तो रहेंगे ना वहां, तो मैं भी रह लूंगी। राधिका, वहां मेरे अलावा और भी आदमी होंगे, आपका वहां जाना ठीक नहीं है। माधव ने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए समझाने की कोशिश की। राधिका ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। क्यों, क्या आप नहीं होंगे वहां और किसी की मजाल जो आपके लहते मुझे गलत नजर से देख ले? बात वो नहीं है, भरोसेमंद और शरीफी लोग यहाँ काम करते हैं, बस वहाँ आपका होना ठीक नहीं लगेगा। कोई ठीक से बैठने की जगह भी नहीं है, परेशान हो जाएंगे आप बेवजह खड़े खड़े। पर मैं आपको खाना बनाते हुए देखना चाहती हूँ और मुझे आपका किचन भी देखना है। राधिका ने अपने नाक मुंह से कोड़ते हुए फुला लिया और उदास सी मायूस निगाहों से उसे देखने लगी। माधव पल भर को उलझन में पड़ गया, फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और सारी चिंता एक लम्हे में गायब हो गई। मैं आपको वीडियो कॉल पर किचन दिखा दूंगा और आप मुझे खाना बनाते हुए भी देख लीजिएगा, अब खुश है आप? कारण राधिका सामने से देखना चाहती थी तो ज्यादा खुश तो नहीं थी, पर उसने सर हिला दिया। माधव ने पहले तो राधिका को किचन दिखाया, वहां काम करने वाले लोगों ने बड़े ही आदर से उसे ग्रीट किया। फिर माधव ने फोन सेट किया और खुद खाना बनाने में लग गया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद राधिका एकटक माधव को निहार रही थी। उसका चौड़ा माथा जो कुछ हद तक बालों से ढक गया था, तनी हुई भौहें, उसकी घनी पलकें कभी झुकती तो कभी उठती, खड़ी नाक जिस पर ठहरी पसीने की बूंद सीप में रखे मोती जैसे चमक रही थी, शार्प जॉ लाइन, उसके दूध से गोरे चेहरे पर सुनहरी रंगत बिखरी हुई थी जिससे उसका चेहरा सोने से दमक रहा था। जब फ्लेम बढ़ती तो उसकी काली काली आंखें चमक उठती, जब निगाहें फोन की स्क्रीन की ओर घुमाता तो लब दिलकशी से मुस्कुरा उठते, और उस लम्हे में वो इतना सेक्सी लगता कि राधिका उसके चार्मिंग हैंडसम चेहरे और आकर्षक मुस्कुराहट में ही खो जाती। बिल्कुल प्रोफेशनल शेफ जैसे वो अपना काम कर रहा था। ये माधव का एक अलग ही रूप था जो राधिका को अपना दीवाना बनाने लगा था। पल भर को भी उसकी नजरें माधव पर से न हटी थी। करीब पौने घंटे बाद माधव लंच रेडी करके राधिका के सामने हाजिर हो चुका था, पर राधिका अब भी खाने की जगह एकटक उसे ही देख रही थी। क्या हुआ, आज खाने की जगह कहीं मुझे खाने का इरादा तो नहीं आपका? माधव ने शरारत से मुस्कुराते हुए राधिका को छेड़ा। राधिका पल भर कुसक पकाई, फिर झेपते हुए बोली, मैं इंसानों को नहीं खाती। सच में आप इंसानों को नहीं खाती? माधव ने जिस अंदाज में ये कहा और जिस तरह उसे देख रहा था, राधिका शर्माने पर मजबूर हो गई और उसने उसकी नजरों का सामना ना कर पाने की सूरत में अपनी निगाहों को झुका लिया। वैसे अगर मुझे पता होता कि मुझे कुकिंग करते देखकर आपका ये हाल होगा, आप इस कदर मुझ पर फिदा हो जाएंगी तो बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। फिर शायद आपको शादी के लिए मनाने के लिए मुझे इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते और ना ही इतना परेशान होना पड़ता। एक बार फिर माधव शब्दों से उसे छेड़ते हुए मुस्कुराया। राधिका ने नाराजगी से अपने गाल को फुलाया और कनखियों से उसे घूरने लगी। सारी उम्र पड़ी है मुझे घूरने के लिए, आराम से घूरती रहिएगा, अभी इसे खाकर बताइए कि कैसा बना है। माधव ने एक निवाला उसकी ओर बढ़ाया तो अपनी नाराजगी दिखाते हुए राधिका ने मुंह हटते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। माधव ने निवाला उसके लबों के करीब करते हुए आंखों से उसे खाने की रिक्वेस्ट की। कुछ पल नखरे दिखाने के बाद राधिका ने उस पर रहम करते हुए निवाला अपने मुंह में ले लिया। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई, सारी नाराजगी भूल गई और मीठी सी मुस्कान उसके लबों पर थिरक गई।
माधव को अपनी मेहनत का फल मिल चुका था और अब कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रह गई थी। माधव यूं ही उसे खिलाता रहा और राधिका खाती रही, साथ में उसे भी खिलाया। कुछ प्यार भरे खट्टे मीठे लम्हे साथ बिताने और ढेरों बातें करने के बाद माधव राधिका को घर छोड़ाया, जहां अनुपमा जी उसके इंतजार में बैठी थीं। देखते देखते ढाई महीने से ऊपर का वक्त बीत गया था। अब निशांत और अर्पिता की शादी के दिन नज़दीक आ गए थे। दोनों घरों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अर्पिता और निशांत की खट्टी मीठी नोकझोंक भरी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। पहले तो बस निशांत बाबू ही अर्पिता के दीवाने बनकर फिरते थे, पर अब अर्पिता भी उसकी प्रीत के रंग में रंगी मोहब्बत के सागर में गहराइयों तक उतर गई थी। बातों का सिलसिला जारी था और दोनों ही अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। ये दो ढाई महीने बेहद खास रहे उन दोनों के लिए, तो राधिका और माधव की जिंदगी में भी एक खास अहमियत रही इस वक्त की। एक दूसरे से प्यार तो वो सालों से करते थे और अब शादी के बंधन में भी बन चुके थे, पर उनके रिश्ते को मजबूती देने में इस वक्त का बेहद खास रोल रहा था। मोहब्बत की खुशबू से उनकी छोटी सी दुनिया महक रही थी। एक दूसरे का साथ पाकर दोनों बेहद खुश थे और अब अपने अतीत को पीछे छोड़ एक दूसरे की हथेली थामे बहुत आगे निकल आए थे। राधिका ने ना सिर्फ पूरा घर संभाल लिया था, बल्कि माधव की भी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। उसका हर काम बड़े दिल से करती और जब उसकी बाहों में समाती तो खुद को भुलाए बस खुद में समाते माधव के एहसासों को महसूस करती। माधव का साथ और प्यार पाकर उसका मन हर डर से आज़ाद हो गया था। फिलहाल तो वो अर्पिता की शादी की तैयारियों में कुछ उलझी रहती, पर माधव का पूरा सहारा मिल रहा था उसे। सही मायनों में अब वो खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे थे। राधिका की जिंदगी की कमियों को माधव ने भर दिया था, तो माधव की जिंदगी के सूनेपन को राधिका ने दूर कर दिया था। दोनों साथ में बेहद खुश थे और उन्हें खुश देखकर बाकी सब सुकून महसूस करते थे। सब अच्छा था, बस कविता को जाने किस बात की नाराजगी थी उससे कि राधिका से सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती थी। माधव की धमकी और अनुपमा जी के कारण अब वो कुछ करती नहीं थी, वरना उसका यहाँ आना ही बंद हो जाता। इन दो ढाई महीनों में जो सबसे सही काम हुआ था वो ये कि अनुपमा जी ने घर और रेस्टोरेंट दोनों राधिका के नाम कर दिया था और अब वो चिंता मुक्त हो गई थी। ये भी एक कारण था कि कविता अब राधिका से उलझती नहीं थी, पर चिढ़ती अब भी ज्यादा थी। टू बी कंटिन्यूड। आज के भाग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा बताइए।